आज कल
दोस्तों कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों कहा जाता है कि दाइश खुरासान नामक आतंकी गुट का गठन जनवरी 2015 को आधिकारिक ढंग से किया गया था। इस गुट का गठन उन आतंकवादियों की स्मृति से हुआ था जो इराक और सीरिया में बुरी तरह से पराजित हो चुके थे। इनको अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पहुंचाया गया था। जब आधिकारिक रूप में दाइश खुरासान के गठन की घोषणा कर दी गई तो कुछ स्थानीय आतंकी गुटों के सदस्यों और तालिबान से अलग होने वालों ने इस गुट की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस प्रकार से दाइश खुरासान में कई आतंकी गुटों के सदस्य मौजूद हैं।
शायद यही कारण था कि इस गुट ने बहुत ही कम समय में उत्तरी और पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बहुत गहरी पैठ बना ली। इसके बाद उसने पाकिस्तान से मिलने वाली अफगानिस्तान की सीमा पर कई हमले किए। इस प्रकार की हिंसक कार्रवाइयों ने दाइश खुरासान की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इस बात का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण करने से पहले तक यह आतंकी गुट शक्ति के हिसाब से वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश था।
पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ पूर्वी अफगानिस्तान का नंगरहार प्रांत धीरे धीरे दाइश खुरासान के एक मजबूत गढ़ में परिवर्तित होता चला गया। इस आतंकी गुट ने अफगानिस्तान में अपनी हिंसक गतिविधियों के आरंभिक दिनों में इस देश के अल्पसंख्यकों विशेषकर शिया मुसलमानों को अपने हमलों का लक्ष्य बनाया। हालांकि उसने अफगानिस्तान की राजधानी सहित इस देश के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकी कार्रवाइयां जारी रखीं, किंतु मुख्य टारगेट वहां के शिया मुसलमानों को बनाया। दाइश खुरासान ने अफगानिस्तान में अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों पर इतने भीषण तथा खतरनाक हमले किए जिसके कारण वहाँ के आम लोगों में इस गुट के प्रति घृणा पैदा हो गई।
अफगानिस्तान के भीतर इस आतंकी गुट की आतंकी गतिविधियां इतनी भयावह हो चुकी थी कि सन 2018 तक इस आतंकी गुट की गणना दुनिया के चार सबसे खतरनाक गुटों में होने लगी थी। हालांकि सन 2019 के अंत और 2020 के आरंभ में अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सरकार ने दाइश खुरासान के अधिक दमन का दावा किया था, किंतु बाद में आतंकी गुट की ओर से की जाने वाली कार्रवाइयों ने ये सिद्ध कर दिया कि उनके दावे निराधार थे।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी के काल के दौरान कई कारणों से वहां पर दाइश की आतंकी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती गईं। दाइश खुरासान की आतंकी गतिविधियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अफगानिस्तान के धर्मगुरुओं, विशेषकर वहां के सुन्नी मुसलमान धर्मगुरुओं ने दाइश के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बात इतनी बढ़ गई थी कि अफगानिस्तान के मुसलमान धर्मगुरुओं ने दाइश के विरुद्ध जन आंदोलन चलाने का भी आह्वान किया।
दाइश ने सन 2015 से 2020 के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अधिक से अधिक हिंसक कार्रवाइयां करके खतरनाक वातावरण पैदा करने की चेष्टा की थी। हनफी और वहाबी विचारधाराओं के मतभेदों के कारण दाइश के भीतर कई प्रकार के मतभेद पैदा हो गए थे। इस बारे में तालिबान के एक नेता नईम उल हक हक्कानी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमारत इस्लामी सलफियत के साथ और दाइश की वैचारिक सोच के बीच मतभेद पाया जाता है। अफगानिस्तान में हम हनफी विचारधारा का अनुसरण करते हैं, इसलिए दाइश की सलफी विचारधारा से हमारा कोई संबंध नहीं है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की आम जनता के बीच दाइश का कोई स्थान नहीं है। अब इस बात को खुलकर कहा जाने लगा है कि मोहम्मद अशरफ गनी के सत्ताकाल में अफगानिस्तान के भीतर दाइश की सक्रियता बिना सरकारी आशीर्वाद के संभव ही नहीं था।
अफगानिस्तान की संसद में नंगरहार प्रांत के प्रतिनिधि जाहिर कदीर ने सन 2015 में संसद के भीतर अपने भाषण के दौरान बताया था कि बहुत से स्थानों पर दाइश के आतंकवादी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। उन्होंने कहा था कि ये काम बिना सरकारी समर्थन के संभव ही नहीं है। उनकी इस बात को मीडिया में बहुत कवरेज मिला था, किंतु वहाँ की तत्कालीन सरकार ने इस बारे में चुप्पी साध दी थी। बहुत से जानकार बताते हैं कि न केवल अफगानिस्तान के पूर्व सरकार के काल में दाइश की गतिविधियां कम नहीं हुई, बल्कि तालिबान के शासनकाल में भी वे जारी थीं और जारी हैं। बल्कि आतंकी कार्रवाइयां अब अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के विरुद्ध भी की जा रही हैं।
दोस्तों, ISIS के नमक गुट ने आरंभ से ही अफगानिस्तान के भीतर शिया मुसलमानों के विरुद्ध आतंकी कार्रवाइयों का बाजार गर्म कर रखा है। सन 2021 में उसने वहां के कंदूज प्रांत में लगातार दो जुम्मों तक शिया मुसलमानों की नमाज़े जुम्मा में भीषण आतंकी हमले करवाए। इन हमले में बहुत बड़ी संख्या में नमाजी शहीद और घायल हुए थे। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की कड़ी आलोचना की गई। ये आलोचना इसलिए भी की गई कि तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद अफगानिस्तान के आम लोगों, विशेषकर वहाँ के अल्पसंख्यकों में सुरक्षा एवं शांति स्थापित करने का दावा किया था।
हालांकि दाइश खुरासान नामक आतंकवादी गुट का नारा है कि वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से पर नियंत्रण चाहता है, किंतु उसकी अधिकांश कार्रवाइयाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही होती रही हैं, जबकि उसके बाद ईरान में भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद दाइश के आतंकवादी पिछले कुछ वर्षों के दौरान ईरान के भीतर कई रक्त रंजित कार्रवाइयाँ अंजाम दे चुके हैं। अमेरिका और कुछ अरब देशों के समर्थन से ये आतंकी गुट ईरान में कई आतंकी घटनाएँ कर चुका है। दाइश खुरासान ने लश्कर झंगवी नामक आतंकी गुट के सहयोग से ईरान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर बलूचिस्तान में कई आतंकवादियां कार्रवाइयां की, जिनका मुख्य उद्देश्य अशांति उत्पन्न करके अलगाव को हवा देना था।
सन 2017 में दाइश खुरासान ने ईरान की संसद और स्वर्गीय इमाम खोमेनी के रोजे पर हमले किए। बाद में सन 2018 को दक्षिणी नगर अहवाज में सेना की परेड के दौरान आतंकी हमला किया। उसके बाद सन 2022 और 2023 में शिराज नगर में स्थित शाहचरा के मज़ार पर दो बार हमले किए। इसके बाद 3 जनवरी 2024 को केरमान नगर में शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के अवसर पर शोकाकुल लोगों के बीच धमाके किए। आतंकी गुट ने केवल केरमान के आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ही स्वीकार की। दाइश के दो आतंकवादी अपनी कमर में विस्फोटक पदार्थ बांधकर उन लोगों के बीच में घुस आए जो शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी में शोकाकुल थे। इस आतंकी हमले में 94 लोग शहीद हुए थे। इसमें घायल होने वालों की संख्या बहुत अधिक थी।
दोस्तों, दाइश के पूर्व प्रमुख अबू बकर अल बगदादी ने सन 2014 के अंत में पाकिस्तानी नागरिकता रखने वाले हाफिज सईद खान को दाइश खुरासान का मुखिया नियुक्त किया था। हाफिज सईद खान ने अतिवादी तालिबान के एक गुट के साथ अल बगदादी की बयत की थी। इसी के साथ अल बगदादी ने अब्दुल रऊफ काजिम को अफगानिस्तान में हाफिज सईद खान का सहायक बनाया। अमेरिकी दावे के अनुसार जून 2016 को हाफिज सईद खान को एक ड्रोन हमले में मारा गया। अमेरिकियों का दावा है कि उसने داعش خراسان کے کم سے کم 30 سدسیوں کی ہتیا کر دی۔
حافظ سعید خان کی مرتیو کے بعد داعش کے گتیوادی عبدالحسیب نے اس گٹ کا نیتوتو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عبدالحسیب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حافظ سعید خان سے ادھک ہنکار اور خطرناک تھا۔ اس نے 2017 تک اس گٹ کا نیتوتو سنبھالا۔ عبدالحسیب کے کال میں کابل کے اسپتال پر حملہ اس کی سب سے مہتوپورن کاروائی مانی جاتی ہے، جس میں 50 لوگ مارے گئے اور بہت ادھک لوگ گھائل ہو گئے۔ اسپتال پر حملے کے بعد افغانستان کے ننگرہار پرانت میں ایک جھڑپ کے دوران یہ آتنکی مارا گیا۔ عبدالحسیب کا اترادھیکاری ابو سعید تھا، جو اس سے بھی ادھک خطرناک اور دشت تھا۔ وہ بھی کچھ ہی سمے تک داعش خراسان کا نیتوتو سنبھال پایا اور اپنے ہی گرو کی بھاتی ایک حملے میں مارا گیا۔
اس کے بعد اس آتنکی گٹ کے مکھیا بہت تیز سے بدلتے رہے، یہاں تک کہ اسلم فاروقی نامک ویکتی نے اس کی باگڈور سنبھالی۔ اس کے لشکر طیبہ، حقانی نیٹورک اور کچھ انیہ آتنکی گٹوں کے ساتھ نکٹ کے رشتے تھے۔ اپریل 2020 کو طالبان نے اسلم فاروقی کو گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد جون 2020 میں جس ویکتی نے داعش خراسان کا نیتوتو سنبھالا اس کا نام تھا الشباب المہاجر۔ الشباب المہاجر کا نام ثناء اللہ غفاری ہے۔ وہ اکتوبر 1994 میں پیدا ہوا تھا۔ کابل کے نکٹ شکر درے نامک چھت میں اس کا جنم ہوا تھا۔ 2020 سے وہی اس آتنکی گٹ کا نیتوتو کر رہا تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ اس کا پریوار بھارت سے پلائن کر کے افغانستان آیا تھا۔ غفاری نے اپنی پڑھائی کابل میں پوری کی ہے۔ اس نے کابل کے پولی ٹیکنک سے انجینئرنگ کی ہے۔ اس آتنکی کی مشہور کاروائیوں میں 26 اگست 2021 کی آتنکی گھٹنا کا الیکھ کیا جا سکتا ہے۔ 26 اگست 2021 کو کابل کے انتراشٹریہ ہوائی اڈے پر یاتریوں کی بھیڑ کے بیچ کی جانے والی آتنکی کاروائی میں 182 لوگ مارے گئے تھے، جن میں ادھکانش عام ناگرک تھے۔ داعش خراسان کے انیہ آتنکی کاروائیوں کا الیکھ ہم اگلے کاریہ کرم میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔